ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कोशी राजमार्ग अंतर्गत संखुआ सभा खांदवारी की माथांका सड़क का हुआ ब्रेक थ्रू। अध्यादेश लगायत मुद्दों पर संसद में एक होकर प्रस्तुत होने का सत्तारूढ़ दलों का निर्णय। सहकारी अनियमितता संबंधी छानबीन के उद्देश्य से सरकार ने सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यालय किया संचालित। सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों को शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही पेश करने की कार्यतालिका हुई तय। और दक्षिणी लेबनान में इसराइली सैनिकों के हमलों में 22 लोगों की हुई मौत और 124 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। कोशी राजमार्ग अंतर्गत संखुआ सभा की खांदबारी से किमाथांका तक की सड़क का आज ब्रेक थ्रू हुआ। संखुआ सभा जिला मुख्यालय खांदबारी से चीन से सटी उत्तरी सीमा नाका किमाथांका तक की 158 किलोमीटर सड़क का ट्रैक खुद चुकने के बाद सड़क का आज ब्रेक थ्रू किया गया। भोटखोला गांवपालिका वार्ड नंबर 1 चामतांग में संखुआ सभा से प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का, रक्षा मंत्री मानवीर राय और भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल की उपस्थिति में ब्रेक थ्रू किया गया। इसके साथ ही अब भारत से चीन तक के कोशी राजमार्ग का ट्रैक खोलने के साथ साथ सड़क स्तर उन्नति और उसे चौड़ा बनाने का काम होगा। सत्ता साझेदार दलों की बैठक ने संसद में एक होकर प्रस्तुत होने का फैसला लिया है। बैठक ने निष्कर्ष निकाला कि आवश्यकता के आधार पर अध्यादेश जारी किए गए हैं, इसलिए इस मुद्दे पर सभी एकमत होंगे। संसद के आसन्न शीतकालीन अधिवेशन में सत्ता पक्ष की तैयारी और सरकार के काम की प्रभावकारिता लगायत विषयों में आज शाम को प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में हुई सत्ता पक्षीय दलों की बैठक ने संसद के एजेंडों में साझा मत प्रस्तुत करने का निर्णय किया। बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सरकार संचालन के बारे में ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि सरकार और गठबंधन दोनों ही अच्छे से चल रहे हैं। सरकार और सत्तारूढ़ दलों के बीच समस्या न होने के निष्कर्ष के साथ बैठक ने संसद में एकमत बनाकर जाने का निर्णय किया। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले उपाध्यक्ष एवं उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का, लोसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर, नाओपा अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ, जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउत लगायत सहभागी थे। बता दें कि संघीय संसद का शीतकालीन अधिवेशन इसी माह के 18 गति से शुरू हो रहा है। इसी माह 18 गति से शुरू होने जा रही संघीय संसद के शीतकालीन अधिवेशन की कार्यतालिका तैयार की गई है। सभामुख देवराज घिमरे की अध्यक्षता में आज सिंह दरबार में हुई राजनीतिक दलों के प्रमुख सचेतकों और सचेतकों के साथ हुई बैठक ने माघ महीने भर के लिए कार्यतालिका तैयार की है। बैठक के बाद सत्तारूढ़ नेकपा एमाले के मुख्य सचेतक महेश बरतौला ने बताया कि संसद के पहले दिन शुरू में प्रधानमंत्री और दलों के शीर्ष नेतागण संबोधन करेंगे और उसी दिन सरकार द्वारा लाए गए विभिन्न अध्यादेश संसद में पेश होने की कार्यतालिका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि संसद के शीतकालीन अधिवेशन में कानून निर्माण के काम को व्यापक तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। आज भक्तपुर की सूर्य विनायक नगरपालिका के प्रशासकीय भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सहमति हो जाए तो जल्द ही संविधान संशोधन होगा और सहमति अगर नहीं हो सकी तो कुछ समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सहमति अनुसार वे अभी कांग्रेस का पूरा साथ पा रहे हैं और कल को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को भी नेकपा एमाले पूरा साथ देगी। सरकार द्वारा हाल ही में सहकारी आयन 2074 को संशोधित करने के लिए जारी किए गए अध्यादेश के मुताबिक सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यालय संचालित किया गया है। पूर्व के राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड के पुलचोक स्थित भवन में आज आयोजित कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी ने प्राधिकरण कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री अधिकारी ने प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों से शपथ ग्रहण भी कराया। मौके पर उन्होंने कहा कि सहकारी में हुई अनियमितताओं की ऊपर से लेकर नीचे तक छानबीन कर प्राधिकरण काम करेगा। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि वो फिलहाल कोई दलीय जिम्मेदारी लेने के क्रम में नहीं है। आज विराटनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति प्रणाली और राष्ट्रपति पद गैर राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों ने इसे विमर्श का मुद्दा बनाया हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्र के समूचे विकास में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को अपने स्थान से योगदान देना चाहिए। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जुमला के कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रति चिकित्सा शिक्षा के विद्यार्थियों का आकर्षण बढ़ने लगा है। चिकित्सा शिक्षा विषय अंतर्गत एमबीबीएस, बीपीएच, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग लगायत विषयों के अध्ययन के लिए बहरहाल विभिन्न जिलों से 104 विद्यार्थी जुमला पहुंचे हैं। धारचूला के जिला मुख्यालय खलंगा को जोड़ने वाला एकमात्र महाकाली लोक मार्ग 4 दिनों से अवरुद्ध है। जिला मुख्यालय के नजदीक रहे महाकाली नगर पालिका वार्ड नंबर 5 किमतड़ी के ठड्डिया काटा पहाड़ में सड़क अवरुद्ध है। बता दें कि शुक्रवार सड़क चौड़ी करने के दौरान भूस्खलन हुआ था। एकमात्र मुख्य राजमार्ग के अवरुद्ध होने से छोटी बड़ी वाहनों को रोका गया है। वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण खलंगा तक आवाजाही ठप बनी हुई है। बांके जिले के किसानों ने इस साल 11 करोड़ रुपए से अधिक का धान बेचा है। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगंज ने कहा कि 2 माह के दौरान किसानों से 32,000 क्विंटल से अधिक धान खरीदा गया है। शाखा के प्रमुख रामशरण लामिछाने ने बताया कि कार्यालय ने बीते कार्तिक 20 गते से धान की खरीद शुरू कर पूस 19 गते तक 11,33,071,295 रूपये का धान खरीदा गया है। सोनाम लोसार पर्व के अवसर पर काठमांडू की टोडी खेल में कल से 3 दिनों तक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेपाल तामांग घेदुंग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सोनाम लोसार समारोह मूल आयोजक समिति के संयोजक मोहन कुले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में इसराइली सैनिकों के हमलों में 22 लोगों की मौत हुई है और 124 लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इलाके से हिजबुल्लाह के चले जाने और इसराइली सैनिकों की वापसी की समय सीमा पूरा होने के बाद भी इसराइली सैनिक वहां पर मौजूद हैं। इसराइली सेना ने कहा है कि उसने चेतावनी के तौर पर कुछ इलाकों में गोलियां चलाई थीं। फायरिंग में लोग घायल हुए हैं या नहीं, इस बारे में इसराइली सेना ने अलग से जानकारी नहीं दी है। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह के साथ हुए युद्ध विराम समझौते को अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इसराइल के कितने सैनिक अभी भी लेबनान में मौजूद हैं और वो कब तक वहां रहने वाले हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसराइल के कब्जे वाले इलाके में जाने की कोशिश कर रहे आम लोगों पर इसराइली सैनिकों ने हमला किया है। मारे जाने वाले लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं घायल हुए लोगों में महिलाएं, बच्चे और एक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। लेबनान की सेना ने कहा है कि इसराइली हमले में उसके एक सैनिक की मौत हुई है और एक सैनिक घायल हुआ है। इसराइल और हमास के बीच समझौता होने के बाद अब उत्तरी गजा में लोगों ने अपने घरों की तरफ वापस लौटना शुरू कर दिया है। इससे पहले इसराइल ने हमास पर युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था और उत्तरी गजा में लोगों को लौटने से रोक दिया था। हमास ने गजा के विस्थापितों की उत्तर गजा में वापसी को जीत बताया है। चरमपंथी संगठन हमास ने कहा है विस्थापितों की वापसी उनके लोगों की एक जीत है, ये विस्थापन और इसराइली कब्जे की योजना की असफलता और हार का संकेत है। हमास का ये बयान आज सुबह नेटजरिज्म कॉरिडोर के खुलने के बाद आया है। गजा के सुरक्षा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया है कि सीमा खोले जाने के बाद 2 घंटे में 2 लाख विस्थापित फलस्तीनी पैदल चलकर गजा लौटे हैं। AFP ने बताया है कि पैदल आने वालों को 2 घंटे का समय देने के बाद गाड़ियों के लिए सीमा खोली गई। एएफपी के मुताबिक गजा शहर और उत्तर के इलाके में विस्थापितों की देखरेख के लिए गजा के प्रशासन ने 5500 से ज्यादा लोगों को नियुक्त किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रवासियों को वापस भेजने के मुद्दे पर कोलंबिया के नेताओं को चेतावनी दी है। कोलंबिया की सरकार ने निर्वासित प्रवासियों से भरे अमेरिकी विमानों को कोलंबिया में उतरने की इजाजत नहीं दी थी। उनका कहना था कि जिन विमानों से प्रवासियों को लाया गया था वे सैन्य विमान थे। कोलंबिया सरकार के इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, हम कोलंबिया को उसकी कानूनी जिम्मेदारी को अनदेखा करने की इजाजत नहीं देंगे। कोलंबिया को अमेरिका में जबरन भेजे गए अपराधियों को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा है, अमेरिका कोलंबिया के अधिकारियों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा और तत्काल उनका वीजा रद्द किया जाएगा। ये प्रतिबंध कोलंबिया के साथ साथ उसके सहयोगियों और समर्थकों पर भी लागू होंगे। इससे पहले ट्रंप ने कहा था वो कोलंबिया पर 25% टैरिफ भी लगाएंगे और एक सप्ताह में ये टैरिफ बढ़कर 50% हो सकता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि वो भी अमेरिका के 25% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में अमेरिका पर 25% टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले रविवार को कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने कहा था वो अपने नागरिकों को सिविल विमानों से लाने पर स्वीकार करेंगे, उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, प्रवासियों को सम्मान और गरिमा के साथ वापस भेजा जाना चाहिए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोशी राजमार्ग अंतर्गत संखुआ सभा खांदवारी की माथांका सड़क का हुआ ब्रेक थ्रू। अध्यादेश लगायत मुद्दों पर संसद में एक होकर प्रस्तुत होने का सत्तारूढ़ दलों का निर्णय। सहकारी अनियमितता संबंधी छानबीन के उद्देश्य से सरकार ने सहकारी नियमन प्राधिकरण कार्यालय किया संचालित। सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेशों को शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही पेश करने की कार्यतालिका हुई तय। और दक्षिणी लेबनान में इसराइली सैनिकों के हमलों में 22 लोगों की हुई मौत और 124 हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।